सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म से संन्यास ज्ञान से होगा, कर्म से संन्यास केवल ज्ञान से होगा। लोग ये प्रश्न करते हैं ना, कितने दिन तक काम करते रहे, कितने दिन तक कर्तव्य कर्म हमारे हैं, क्या सारी जिंदगी ऐसे ही लगे रहेंगे, रोज ऑफिस जाओ वापस आओ, संचय करो, 401k में दो, इंडेक्स देखो, फिर दो दिन में 1000 गिर गया। क्या यही जीवन ऐसे ही करते रहे? तो भगवान कहते नहीं, ज्ञान से जो है कर्म संन्यास हो जाएगा। कर्म ज्ञान ही जो है साक्षात कारण है। आप कर्म करते करते कभी कर्म संन्यास नहीं होगा, ये अच्छी तरह जान के रख लो। कर्म करते करते एक दिन सोचोगे कि कर्म कर्तव्य कर्म हमारे खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। केवल ज्ञान से जो है कर्म संन्यास होगा। भगवान कहते हैं 33वें श्लोक के अंदर, श्रेयां द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बढ़िया है, बेहतर है। सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी जो है आपके कर्म है वो ज्ञान मिलने पर सब खत्म हो जाते हैं। फिर एक जगह फिर भगवान कहते हैं, यथै धांसि समिदो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते यथा। ज्ञान अग्नि से सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। ज्ञान एक अग्नि की तरह है, वो जब ज्ञान पैदा होगा तो आपके सारे कर्म जो है खत्म। कर्म संन्यास, कर्म से छुटकारा आपको केवल ज्ञान से मिलेगा। कर्म करते करते सोचोगे एक दिन कर्म खत्म हो जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, कर्म नहीं खत्म होंगे, कर्म चलते रहेंगे। ज्ञान का साधन क्या है? तो दो साधन इसमें बताए गए, एक बहिरंग है दूसरा अंतरंग है। बहिरंग साधन क्या है? तो बहिरंग साधन में कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। आपको गुरु के पास जाना होगा। तद विद्धि परिपातेन, तद विद्धि अगर उस ज्ञान को पाना है, जानना है, विद्धि मतलब जानना है, प्रणिपातेन पहले जाके सरेंडर करो, समर्पण करो पूरा। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करो। हम नहीं बोल रहे हैं, भारी प्रश्न है ना सेवा, सेवा करने के बाद में प्रश्न करो। लोग आते हैं प्रश्न सीधा कर देते हैं, न सेवा किया न सरेंडर किया, पहले ही प्रश्न कर देते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास में गया, बोला हमने ये प्रश्न बहुत महात्माओं को पूछा है, आज तक कोई हमको उत्तर नहीं दे पाया हमारे सेटिस्फैक्शन का। महात्मा समझ गए कि ये प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से चाहता है, शास्त्र के अनुसार नहीं चाहता है, अपने हिसाब से चाहता है। तो उनसे जब पूछा, बोला नहीं मेरे को तो नहीं पता ये कैसा होता है, उत्तर ही नहीं दिया, जा। उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम। और जब आप उनको सरेंडर करोगे, सेवा करोगे, प्रश्न करोगे, तब उसके बाद में वो आपको उत्तर देंगे, तब आपका उपदेश करेंगे वो। ज्ञानी न तत्वदर्शी न, कौन करेंगे? वो ज्ञानी है, वो तत्वदर्शी हैं, उनको ज्ञान प्राप्त है, उन तत्व को देख रहे हैं, वो आपको देंगे। अंतरंग साधन क्या है? तो अंतरंग साधन बताया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। जिसके पास श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, शास्त्र जो कह रहा है वो ठीक है, गुरु जो समझा रहे हैं वो भी ठीक है, ईश्वर को ऊपर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है, और आपकी अपने तरफ से चेष्टा भी होनी चाहिए ना, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, केवल विश्वास है इससे ज्ञान नहीं होगा। तत्पर है संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होगा, तब आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञानम लब्धा, ज्ञान मिल जाएगा। मिलने से क्या मिलेगा? पराम शांति, आपको शांति मिलेगी। शांति माने सुख। जब सुख होता है तब मन में शांति रहती है, पराम शांति कहते हैं मिलेगी। अचिरेण अधिगच्छति, कितना समय लगेगा? अचिरेण, चिर मतलब ज्यादा समय, अचिर मतलब तुरंत, अचिरेण गच्छति। अच्छा, ज्ञान की नौका से बोलते हैं आप पार कर सकते हो। अब कई आदमी ये ऐसा सोचने लगते हैं कि हम तो इतने पापी हैं, हमसे ज्यादा पापी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हमने इतने पाप किए हैं, क्या हमारा कुछ होगा, कल्याण होगा? तो यहां भगवान कहते हैं, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम्। जितने किस्म के पाप हो सकते हैं उन सबको आपने किया है, आप पाप शिरोमणि हो, आपसे ज्यादा और किसी ने पाप नहीं किया है। सर्व ज्ञान प्लवे नैव ब्रजिनम संतरिष्यसि। सारे पाप बोलते ज्ञान की नौका में बैठ जाओ, जहां ज्ञान की नौका में आप बैठ गए ना, सारे आपके पाप खत्म हो गए। देखो ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं समझाने की आपको चेष्टा कर रहा हूं। ज्ञान से आपके सारे पाप भी खत्म हो जाएंगे। संतिरस्सी। अच्छा, इसके बाद में अनुसांगिक विषय इसमें आएगा, अवतार बाद भगवान कैसे अवतार लेते हैं इसकी व्यवस्था आएगी, उसको बताएंगे भगवान हम कैसे अवतार लेते हैं, अवतार क्या चीज है, कब लेते हैं, सब भगवान बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। अवतार लेना मतलब भगवान अपने बारे में बताने जा रहे हैं, बताएंगे वो भी। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे बने, हमने बनाया है, भगवान कहेंगे मैंने किया है और किसी ने नहीं बनाया है, मुझे संसार को पालन करने के लिए, संचालन करने के लिए चार किस्म के आदमी चाहिए, हमने चार किस्म के आदमी बनाए हैं, ये हमारी सृष्टि है। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं 12 किस्म के यज्ञ भी बताएं। 12 किस्म के यज्ञ आएंगे, हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये भी कहते हैं किसी ने अगर जीवन में एक भी यज्ञ नहीं किया तो उसको तो इस लोक में भी कुछ नहीं मिलने वाला है और परलोक में भी नहीं कुछ होगा। जिसने यज्ञ नहीं किया उसका जीवन इस लोक में भी अच्छा नहीं होगा और बाद वाले लोक में भी अच्छा नहीं होगा। तो भगवान चौथा अध्याय कैसे शुरू करते हैं? गुरु शिष्य परंपरा से करते हैं। सबसे पहले हमने किसको दिया? विवस्वान को दिया। विवस्वान मतलब सूर्य को दिया। सूर्य ने किसको दिया? मनु को दिया, मनु ने किसको दिया, इक्ष्वाकु को दिया, सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु को दिया, सब क्षत्रिय हैं। ये ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा का गोमुख कौन है, किसने दिया, भगवान कहते मैंने दिया। तो ये ज्ञान गंगा का गोमुख कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने पहले सूर्य को दिया, सूर्य के बाद मनु, मनु के बाद में इक्ष्वाकु को मिला। तो ये ज्ञान कैसा है, बोलते नित्य है ये ज्ञान, ये ज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है, कभी अव्यय नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये छीन हो गया है, कोई प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आपको हिमालय में ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं चलता रहेगा ये ज्ञान। जैसे शिवानंद महाराज के आश्रम में, बहुत पुराना आश्रम है उनका, उनके वहां वेदांत कोर्स हुआ करता था, उनके बगल में एक और व्यवस्था थी, वहां वेदांत कोर्स होता था। अब वो गए, वो वेदांत कोर्स बंद हो गया वहां, अब बंद हो गया इसका मतलब क्या, और कहीं नहीं होता है, और कई जगह होता है, रामकृष्ण मिशन में है, चिन्मय मिशन में है, अभी हम लोग के जो है ये नवरात्रि के टाइम में CIF में नया कोर्स मलयालम में शुरू हुआ है। तो ज्ञान लुप्त नहीं होता। गुरु जी की कल्पना है कि हमारा जो है ये ज्ञान यहां पर अमेरिका में भी हो, ऐसा उन्होंने घोषणा की थी कि डैलस में भी शुरू करेंगे हम। तो ज्ञान इस तरह से वो चलता रहता है, एक के बाद एक गुरु शिष्य परंपरा में वो चलता रहता है, ये नष्ट नहीं होता। भारत के ऊपर अनेक विदेशियों ने चढ़ाई की, हमारे कल्चर को नष्ट करने की चेष्टा की, क्या कल्चर नष्ट हुआ, नहीं हुआ, वैसे ही है। इसी तरह ज्ञान की परंपरा भी जो हमको लगता है नष्ट हो गई, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसके पास में था वो कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया मतलब वो विषयों के अंदर चला गया, उसका प्रैक्टिस नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए ये परंपरा चली आई है। बहुत से लोग भारत से जाके विदेश में जाके हो बस गए, अफ्रीका में चले गए, या कोई अमेरिका में आ गया, या दूसरी दूसरी जगह जाके बस गए। अब उसके बाद में वो जब अपने बच्चे वहां होते हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो बताते हैं भारत कैसा देता है, बहुत आध्यात्मिक है, बहुत साधु लोग रहते हैं वहां, सत्यता है, लोगों ने ऐसा देखा है पीछे में। अब पांच जनरेशन के बाद में आपके जो है बच्चे जाते हैं देखने के लिए भारत, अब उनको साधु नहीं नजर आते, रास्ते पर गाय नहीं नजर आती है, बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी हुआ करती थी, हम लोगों ने देखा है, अब जाओगे नहीं मिलती है, दूध ग्वाला लेके बिक्री करने आता था, अब प्लास्टिक के पैकेट में मिलता है, अब ग्वाला नजर नहीं आता है, कितना बदलाव हो गया। मगर ज्ञान है, ज्ञान को एक्सप्लेन करने की या उसको प्रेजेंट करने की पद्धति बदलती रहती है, उसमें बदलाव आता है। जब गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ शुरू किए तो लोग बोलते थे अरे तो नया ज्ञान है, नया ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान बहुत पुराना है। अच्छा एक चीज और आपको बताते हैं, भगवान कृष्ण के ज्ञान देने के पहले भी ज्ञान, तो ये ज्ञान केवल 5000 वर्ष पुराना नहीं है कि भगवान कृष्ण ने दिया और उसके पहले नहीं था, ज्ञान राम के टाइम में भी था, सतयुग में भी था, ज्ञान बराबर है। तो भगवान जो है अर्जुन को परंतप करके बोल रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, जो क्षत्रियों को तपाए उसको कहते हैं परंतप, मगर वो तो अभी भीरू की तरह बैठ गया, रो रहा है, क्यों परंतप कहते हैं, परंतप विश्वास से कह रहे हैं कि उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाए। हम लोग अपने वो बच्चे नहीं कहते, तुम तो शेर हो, भले ही कॉकरोच से डरता हो, हम लोग क्या कहते हैं, शेर हो तुम। अब भगवान भी उसको कहते हैं परंतप हो तुम, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं। जब ये ज्ञान दुर्बल व्यक्तियों के हाथ में पड़ गया तो पर लगा जैसे परंपरा आगे नहीं बढ़ रही है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं बढ़ रही है। जैसे बहुत से प्राणी या बहुत से आपको उद्भिद पेड़ पौधे सब एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, पता नहीं अब वो है कि नहीं। बस सीड रूप में, बीज रूप में वो कहीं ना कहीं है, हटात कुछ दिन के बाद में नजर आ जाता है, अरे ये प्राणी भी है, ये एक चिड़िया नए किस्म की दिखाई पड़ी है, कभी दिखाई नहीं पड़ा। तो ज्ञान जो है ये जीवित है, अभी भी जीवित है। मान लो एक किताब के अंदर ज्ञान लिखा है और वो किताब नष्ट हो गई, तो आपने उसको रिप्रिंट कर लिया। तो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वो रिप्रिंट ज्ञान है। रिप्रिंट ज्ञान है मतलब ज्ञान उसके पहले भी था मगर लोप हो गया। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, मैं क्षत्रिय को देता आया हूं, तुम क्षत्रिय तुमको फिर से देता हूं। तो भगवान ने ज्ञान उसको फिर से दे दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, नष्ट हो गया, मैं फिर से तुमको यह देता हूं। अच्छा अब तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं
स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमं स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमं
स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन है। अद्य अद्य मतलब आज जो तुमको दे रहा हूं वो वही ज्ञान है, सिचुएशन डिफरेंट है। क्या सिचुएशन डिफरेंट है? जब सूर्य को दिया था तब शांति थी, आज अर्जुन तुमको हम युद्ध भूमि में जो दे रहे हैं वो जगह दूसरी है, सिचुएशन दूसरी है, मगर ज्ञान वही है। ज्ञान में परिवर्तन नहीं है। मया मीन्स भगवान कहते हैं मैंने दिया है, ग्लोरिफिकेशन उनकी विभूति है कि मैंने दिया। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, पुराना ही है, ज्ञान अव्यय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। केवल उसका प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन जो है थोड़ा सा परिवर्तन युग के हिसाब से हमने किया है। मैं अभी आपको बता रहा था कि गुरुदेव ने जब ज्ञान यज्ञ शुरू किया लोग कहते अरे ये तो नई चीज है। एक बार नारद जी बहुत विद्वान थे, उनको 64 कलाएं आती थी। हम लोग के पास में तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होती है ना, आप अपने पीछे पद भी लगा देते हो, बीकॉम है, एमकॉम है, ये है वो है, ऐसा करके 4-5 डिग्री लगा के विजिटिंग कार्ड बना देते हो। नारद जी के पास में 64 डिग्री थी, बस स्टिल ही वॉज नॉट हैप्पी। तो सनक सनंदन सनातन कुमार के पास में सब गए कि मेरे को तो हम भी इतना पाके भी हम संतुष्ट नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या पढ़े हो बताओ, उनके बड़े भाई हैं। किसके बड़े भाई हैं? नारद के। पिता कौन है उनके? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि जो है 4 कुमार हुए हैं, सनत सनक सनंदन सनातन 4। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा सृष्टि बढ़ाओ, अब जाओ तुम जो है पुत्र पौत्र सब करो। बोले बोले हम नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। आजकल भी बच्चे कहते हैं ना मां बाप की बात, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मगर कुछ कर नहीं पाए। अगर आप पिता की बात किसी हायर पर्पज के लिए नहीं मानते हो तो शास्त्र के अनुसार है। उनका कहना है हम ज्ञान मार्ग में रहेंगे, हम हरि का ही भजन करेंगे, हरि को ही याद करेंगे, हम संसार में नहीं जाएंगे, इसलिए आपकी बात नहीं मानेंगे। इसी तरह से आपके बच्चे पत्नी या पति अगर एक दूसरे की बात ना माने, इसलिए ना माने कि मैं सत्संग में जा रहा हूं, पति या पत्नी कहे कि नहीं जाना है, तो वहां आप उसकी अवज्ञा करके भी जा सकते हो, क्योंकि हायर कॉज के लिए आप जा रहे हो। उसके बाद में चूंकि उन्हें सृष्टि नहीं की तो फिर रुद्र आ गए, रुद्र के बाद में फिर रुद्र को बोला सृष्टि करने को, तो रुद्र ने ऐसी सृष्टि की जो भगवान ने क्रिएशन किया उसको नष्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर भगवान बोला अरे रुको, मत करो, इसको बंद करो। फिर 10 ऋषियों का जन्म हुआ, ये सब ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, माता पिता के संयोग से नहीं हुए, वो मानसिक पुत्र हैं। तो अब नारद जी हुए 10 ऋषियों में, तो अब नारद के बड़े भाई हुए ना सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तब नारद जी उनसे जाके पूछते हैं कि मेरे को बड़े भाई को कि भाई मेरे के पास इतनी विद्याएं हैं मगर मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, क्या क्या पढ़ा तुमने? बता दिया इतनी कलाएं हमको आती हैं। बोले आप समझ गए, बैठो। फिर उन्होंने उपदेश कर दिया, ज्ञान दे दिया, आत्मज्ञान दे दिया। तो नारद जी कहते हैं प्रकाशित है को अपनी नवीन मार्ग, ये क्या कोई नवीन मार्ग है? पुराना ज्ञान है, ये बहुत पुराना ज्ञान है। नारद जी कहते हैं कोई नया मार्ग बता दिया आपने? तो लोग ऐसा समझते हैं कि नया, अब जैसे मान लो आप लोग यहां बैठे हो, अगर कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उसको अच्छा लगेगा अगर हम उसको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और मन बुद्धि परिभाषा बताएं। बोले तो पहली बार सुन रहे हैं, हमको यही पता था कि एक ही शरीर होता है, आप 3 शरीर की बात कर रहे हो, मगर आप लोगों में से किसी ने तत्वबोध पढ़ा हो तो आप क्या होगा? मेरे को पता है, हमने पढ़ा हुआ है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो ज्ञान पुरातन है, केवल डिफरेंस क्या हुआ कि भगवान कहते हैं अभी तुमको युद्ध भूमि में दे रहे हैं, और यही ज्ञान जब मैंने उसको दिया था तब उस टाइम में शांति थी। अच्छा, अब अर्जुन जो है ये नहीं पूछ रहा है कि भगवान आप मेरे को ज्ञान क्यों दे रहे हो। अर्जुन ने नहीं पूछा आप क्यों दे रहे हो मेरे को, भगवान कहते हैं कि तुम स्पेशल हो, मैं अपने हृदय की बात तुमको कहने चाहता हूं। क्या है भाई आपका हृदय? गीता में हृदय पार्थ, वो पार्थ है, गीता मेरा हृदय है, मैं उस गीता को तुमको कहना चाहता हूं। क्यों भाई? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम, तुम मेरे भक्त हो। देखो, पहली क्वालिफिकेशन ज्ञान प्राप्त करने की है, आपको भक्त होना होगा। भक्त का मतलब क्या है? आप अपने से उसको श्रेष्ठ मानते हो, आप उसको गुरु मानते हो। अर्जुन ने पहले ही समर्पण किया है कि मैं आपको गुरु मानता हूं और मैं अपने आप को शिष्य मानता हूं, दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं। एक क्वालिफिकेशन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि आपको भक्त होना है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? सखा चेती, तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, पास्ट फ्रेंड हो, तुम दोस्त हो मेरे, इसलिए तुमको देना चाहता हूं। देखो, दोनों गुण भक्त एवं सखा एक साथ मिलना कठिन है, एक साथ मिलना। जब भगवान कहते हैं सखा हो तो भगवान अपने इक्वल कर रहे हैं अर्जुन को, और जब अर्जुन कहता है मैं आपका भक्त हूं तो भगवान को भगवान मानता है, मैं आपका डिबेटी हूं, मैं आपसे एक नॉच नीचे हूं, आप मेरे से सुपीरियर हैं। महाभारत में एक बार इंद्र भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत खुश हो गए, कृष्ण को कहते वरदान मांगो मेरे से। वरदान भगवान सोचने लगे, इंद्र वरदान देना चाहता है, क्या वरदान लूं? तो भगवान ने कहा कि हमारी अर्जुन के साथ दोस्ती बनी रहे, मित्रता बनी रहे, ये वरदान दे दो। देखो मित्रता सखा होना बहुत बड़ी चीज है, मित्र अच्छा मित्र मिलना बहुत बड़ी चीज है। भगवान मित्रता मांग रहे हैं वरदान में कि अर्जुन के साथ में हमारी मित्रता बनी रहे। अच्छा भक्त को आप एनालाइज कीजिए, अर्जुन अपने आप को भक्त मानता है भगवान का, भगवान सुपीरियर है, भक्त नीचे है, भगवान भक्त का रिलेशन है, भगवान उसको सखा मानते हैं, सखा मानते हैं, अपने इक्वल में रखते हैं, इक्वल में रखा हुआ उन्होंने। जब मित्रता स्ट्रांग होती है तो तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य हो जाता है मतलब आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तब नाम के साथ में सखा का नाम भी आ जाता है, जैसे कृष्ण का नाम लिया सुदामा आ जाता है, कृष्ण अर्जुन आ जाता है। भगवान का एक नाम पार्थ सारथी है, किसके लिए पार्थ सारथी यूज होता है? अर्जुन के लिए। हाँ पार्थ कौन है? अर्जुन है। सारथी कौन है? भगवान है। पार्थ सारथी हम किसको कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं ना, पार्थ सारथी ना, पार्थ सारथी भगवान है, पार्थ किसको कहते हैं? अच्छा पार्थ युधिष्ठिर भी है, मगर पार्थ सारथी युधिष्ठिर के लिए भगवान नहीं यूज करते हैं, पार्थ भगवान अर्जुन के लिए ही यूज करते हैं। महाभारत में द्रोण पर्व में ऐसा आया, कृष्ण से आत्मा अर्जुन, अर्जुन से आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा अर्जुन है, अर्जुन की आत्मा कृष्ण है। अगर कृष्ण से कोई घृणा करता है तो अर्जुन से भी घृणा करता है, क्योंकि दोनों एक हैं। इसी तरह से उद्योग पर्व अगेन महाभारत में कहा गया, सत्वम एकम द्विधाशितम, सत्य एक है मगर दो है, दो में स्थित है, एग्जिस्टेंस एक है मगर कृष्ण और अर्जुन दोनों में है। देखो कितना उसको अच्छा स्टेटस भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, सखा है ये हमारे। लोग कहते हैं ना कि हम एक आत्मा है दो शरीर है, ऐसा है हमारा, ऐसा है, इतनी मित्रता है कि हम लोग एक ही हैं मगर दो दिखाई पड़ते हैं। भगवान का हृदय कितना बड़ा है कि उसको सखा मानते हैं। अर्जुन ने कहा कि मैं भक्त हूं, क्यों भक्त है? क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के ईश्वरत्व की बहुत घटनाएं देखी हैं, कई जगह प्रकाशित हो चुका है कि भगवान जो है वो, कृष्ण जो है वो साधारण अर्जुन की तरह या दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं है। दोनों अर्जुन और दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने गए थे कि युद्ध में हमें सहायता चाहिए, तो भगवान ने कहा था कि अगर मैं मेरी तरफ एक तरफ 11 छौनी सेना देने को तैयार हूं, दूसरी तरफ मैं बिना शस्त्र के रहूंगा। दुर्योधन ने 11 अक्षौनी सेना ली और अर्जुन ने कहा मैं तो, भगवान मेरे साथ आ जाएं बस उतना ही काफी है हमारे लिए, क्योंकि जब भगवान जिस तरफ रहेंगे विजय उसी तरफ होगी। ये किसका लक्षण है? भक्त होगा तब ऐसा कहेगा, तो वो भक्त अभी का नहीं बना है, भक्त बहुत आगे से है अर्जुन, भगवान का भक्त है। भक्तोसी में सखा चेती, च का मतलब क्या हुआ? एंड महात्मा लोग कहते हैं उसकी एक और क्वालिफिकेशन है अर्जुन की, एक तो भक्त है, दूसरा सखा है, तीसरा है शिष्य थे हम शादी माम, मैं आपका शिष्य हूं, तो तीन क्वालिफिकेशन अर्जुन की है, वो भक्त है, वो सखा है और वो शिष्य भी है। तो तीन चीज एक में मिलना और कठिन है, इसलिए भगवान कहते हैं रहस्यम उत्तमम प्रोक्तम, इसलिए तुमको जो है मैं एक उत्तम रहस्य बताऊंगा। अधम रहस्य भी हो सकता है, व्हाट इज अधम रहस्य? स्कैंडल बहुत होता है ना, जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जो ये ऊंची पदवी पर गया या कहीं पर कोई क्या बोले और नहीं बोलेंगे उसका उसका स्कैंडल निकाल देते हैं, उसको गिराने की चेष्टा करते हैं। तो ये जो है अधम रहस्य है। भगवान कहते हैं उत्तम रहस्य, क्यों उत्तम रहस्य है भाई? क्योंकि उसका फल उत्तम है, इस रहस्य का फल उत्तम है। मैं ऐसा तुमको बताने जा रहा हूं जिसका उत्तम फल होगा। अच्छा, तो ये रहस्य क्या है? तो रहस्य महात्मा लोग कहते हैं जो साधारणतया उपलब्ध नहीं है। ये रहस्य जो है वो साधारणतया उपलब्ध नहीं है, सबके लिए नहीं है। नंबर दो, भगवान कहते हैं मुझे मालूम है, वो रहस्य मुझे मालूम है। तीसरा, बोले ये रहस्य बहुत कीमती है। बहुत कीमती है मतलब दुनिया की सारी संपत्ति दे के भी अगर ये रहस्य मिल जाए तो जानो ये सस्ता है, बहुत सस्ता है। अच्छा, जिसे देने के पहले लोग विचार करते हैं, विचार करना चाहिए कि देने योग्य है कि नहीं, इसको हम बीज दे रहे हैं, ये बीज कहीं ऊसर भूमि में तो नहीं है, पनपेगा ही नहीं, विचार करना पड़ता है। भगवान ने काफी विचार करने के बाद में 70 साल की उम्र दोनों की, 70 साल से ऊपर उम्र थी अर्जुन की और भगवान की, युद्ध भूमि में पहली बार ज्ञान दे रहा है। आज तक 70 साल तक नहीं दिया उसको, 70 साल तक विचार करने के बाद में जब उसको देखा कि ये योग्य शिष्य है, इसने सरेंडर किया है, मेरे को गुरु माना है, मेरा ये भक्त है, मेरी बात सुनता है, मेरे में श्रद्धा है, मेरे में आस्था है और मेरा सखा भी है, भगवान कहते हैं मैं आपको दूंगा। और जिसको रहस्य मिले वो उसका आदर करे। ये रहस्य क्या है? आत्मज्ञान है। जिसको वो आत्मज्ञान मिले उसका आदर करे कि हाँ भाई ये बहुत कीमती वस्तु है, मेरे हित की वस्तु है, आदर करे। और ये रहस्य श्रुति स्मृति और इतिहास का है, उनका निचोड़ है। ये रहस्य है। अच्छा, अब इन तीनों चीजों में आप देखेंगे भक्त, सखा और शिष्य में एक कॉमन फैक्टर है। क्या है कॉमन फैक्टर? तीनों में प्रेम है। भक्त का भगवान के प्रति प्रेम है, सखा का सखा के प्रति प्रेम है, शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम है। कॉमन फैक्टर एक प्रेम है। तो प्रेम होने से आपको जो है तीन छह लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जब आपको प्रेम होता है किसी से, भक्त का भगवान के साथ में, या सखा का सखा के साथ में, या शिष्य का गुरु के साथ में, तो छह लक्षण दिखाई पड़ेंगे। पृच्छति, जो पूछे शर्म न करे, जो पूछे वो बताए, क्योंकि मित्र मित्र के अंदर कोई पर्दा नहीं होता है, सब बताते हैं। आपका भी जो घनिष्ठ मित्र होगा उससे कुछ नहीं छिपा होगा आपके बारे में, आप भी बताते हैं और आप भी उसके सब अच्छाइयां बुराइयां सब जानते हैं। गुह्यम आख्यति, जहां प्रेम होता है वहां पर कोई सीक्रेट नहीं रह जाता, कोई सीक्रेट नहीं है, पत्नी पत्नी के अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, सब मालूम होता है, एक दूसरे की वीकनेस सब जानते हैं, कितना किसके पास धन है, क्या है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, पता होता है। गृहणाति, जो ले, ले का मतलब ग्रहण करे, मित्र ने दिया ले लिया, और प्रतिगृहणाति, जो दे, तो लेना देना चलता रहता है मित्रों के अंदर, सखा के अंदर लेना देना दोनों ही चलता रहता है। गुरुदेव कहते थे यू कांट लव विदाउट गिविंग, बट यू कैन गिव विदाउट लविंग, यू कैन गिव समबडी विदाउट लविंग, बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। भुक्ते दोनों एंजॉय करें। भोजयते दूसरों का खुश करने की इच्छा, दूसरों को मैं खुशी हूं मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। हम करते हैं ना, जब हम खुश होते हैं हमारा प्रमोशन हुआ या हमारे के अंदर हमारे पास में कुछ अच्छी चीज आ गई तो हम शेयर करना चाहते हैं, हम मित्रों को बुलाते हैं आओ भाई लेट अस एंजॉय। भगवान कहते हैं कि लेट मी शेयर माई नॉलेज विथ यू बिकॉज आई लव यू, तुम मेरे सखा हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। देखो ये बहुत बड़ी चीज भगवान, हम लोग भक्त जो है भगवान को कहते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मैं कितने भक्तों को भगवान कहते हैं आई लव यू। यहां पर अर्जुन को साफ भगवान कह दिया कि तुम मेरे भक्त हो। भक्तोसी में सखा चेती, किसने कहा? भगवान ने कहा ना तुम मेरे भक्त हो। हम खाली चिल्लाते रहते भगवान मैं आपका भक्त हूं मेरे को देखो देखो विपत्ति आ गई है। भगवान यहां कंफर्म कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम मेरे भक्त हो। भगवान ने देखो अपना प्रेम नहीं छिपा पाए, अपना प्रेम अर्जुन के प्रति भगवान छिपा नहीं पाए, छिप सकता भी नहीं है। और भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, पहले ही दूसरे अध्याय में आत्मज्ञान दे दिया। शंकराचार्य जी कहते एतद उत्तम योगम, अर्जुन बहुत खुश है। अब यहां पर भगवान ने असंगत कहा, ऐसी धारणा किसी को ना हो जाए। भगवान ने ऐसा कहा कि मैंने विवस्वान को दिया, कई लोग तो सोचने लगेंगे ना इंटेलिजेंट पीपुल कैसे हो सकता है, भगवान आपका जन्म तो द्वापर में हुआ, विवस्वान का जन्म तो सतयुग के पहले भी हो गया था, तो डोंट ब्लॉक। तो यहां कहते हैं भगवान ने असंगत कहा, ऐसी धारणा किसी को ना हो जाए, अतः उसको दूर करने के लिए शंका करता हुआ सा, शंका करता हुआ सा, अर्जुन को शंका नहीं है, लोगों को शंका हो सकती है कि भगवान ने कैसे उसको सूर्य को दिया, उनका जन्म तो अभी हुआ है, शंका करता हुआ सा यह प्रश्न अर्जुन कह रहा है, अर्जुन भगवान से पूछता है। चौथा श्लोक अर्जुन उवाच,
अर्जुन उवाच,
अर्जुन उवाच,
अपरं भवतो जन्म,
अपरं भवतो जन्म,
परं जन्म विवस्वतः,
परं जन्म विवस्वतः, कथमेतद्विजानीया तमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया तमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न कर रहा है अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, हे भगवान परम जन्म विवस्वतः, परम मतलब पहले, विवस्वान का जन्म सूर्य का जन्म पहले हुआ, अपरम भवतो आपका जन्म बाद में हुआ है, इसमें तो कोई शंका नहीं है, आपका जन्म तो द्वापर युग में जन्माष्टमी को हुआ है, आपका जन्म जेल में हुआ है, कंस बहुत चिंतित हो गया था आपके जन्म से, ये सब तो हमें मालूम है, तो आप कैसे कहते हो कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया। कथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी, कैसे जाने कि आपने सृष्टि के समय सूर्य को यह ज्ञान दिया। मेरे को शंका नहीं है मगर लोगों को शंका हो सकती है, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न कर दिया। अच्छा देखो, इसके पीछे कितनी चीजें सोचने लायक है, इसको देखो आप। अगर आपने ज्ञान सूर्य को दूसरे शरीर से दिया तो आपको याद कैसे है? आप कह रहे हो कि मैंने दिया है, आपने इस शरीर में तो नहीं दिया, ये हमको समझ में आ गया है। आपका मेरी उम्र दोनों बराबर है, इसका मतलब आपने किसी दूसरे शरीर में दिया है। अगर दूसरे शरीर में दिया है तो आपको कैसे याद है? जीव को तो अपना याद नहीं रहता है, आपको कैसे याद है ये बताएं। दूसरा कहते हैं कि अगर आप महात्मा हो, देवता हो, तो सूर्य तो भगवान है, सूर्य देवता है, अगर आपने सूर्य देवता को ज्ञान दिया तो आप निश्चित देवता हो, नंबर वन। और सिर्फ देवता ही नहीं हो, सूर्य से सुपीरियर देवता हो। देखो अर्जुन की सोच देखो, आप केवल देवता ही नहीं हो, आप सूर्य से सुपीरियर देवता हो। अगर सुपीरियर देवता हो तो क्या आप परमेश्वर हो? क्या आप परमात्मा हो? बताओ। ऐसे विचार करना पड़ता है, आप कौन हो, आप अपने बारे में। रुको, देखो ये आस्ते आस्ते भगवान के बारे में जानने की अर्जुन की चेष्टा है। आप अपने पिछले जन्म को जानते हो तो बताओ पिछला जन्म क्या था आपका। अगर आपने सूर्य को अगर ज्ञान दिया है तो आप डेफिनेटली, अगर उसके गुरु हो तो मस्ट बी, विल बी सुपीरियर टू हिम। सुपीरियर हो तो क्या परमात्मा हो आप? अगर आप परमात्मा हो तब ये बताओ कि आप निर्गुण से सगुण में कैसे आए, कैसे आपने सगुण रूप लिया, ये भी बताओ। हम मान लेते हैं आप परमात्मा हो, हमने आपके बहुत से खेल देख लिए हैं, आपकी लीलाएं बहुत देखी हैं, समझ में कुछ कुछ आता है, तो आप निर्गुण से सगुण कैसे बने, निर्गुण कैसे शरीर लेता है, हमारा शरीर कर्म प्रधान है, आप कैसे शरीर लेते हो, आपका भी क्या शरीर कर्म के ऊपर निर्भर करता है क्या? अर्जुन को प्रश्न पूछने का अवसर मिला क्योंकि पहले श्लोक में भगवान ने कहा योगम प्रोक्तवान अहम्, मैंने पूछा, मैंने बताया उसको। अर्जुन ने पकड़ लिया, आपने बताया तो बताओ आप कैसे कैसे बताया, आपको कैसे याद है, पूर्व जन्म की कथा आपको कैसे याद है? अगर आपको याद है तो फिर आप डेफिनेटली सुपीरियर टू सूर्य हो, सुपीरियर टू सूर्य हो तो परमात्मा हो, परमात्मा हो तो आप निर्गुण निराकार हो, आप निर्गुण निराकार हो तो फिर आपने कैसे सगुण रूप धारण किया, सब बताओ, मेरे को बताना होगा आपको। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं अपने भाष्य के अंदर में, भगवान श्री वासुदेव के विषय में मूर्खों की जो ऐसी शंका है कि ये ईश्वर नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तथा जिस शंका को दूर करने के लिए ही अर्जुन का यह प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए श्री भगवान बोले। तो जिनको ऐसी शंका होती है कि पता नहीं ये ईश्वर हैं कि नहीं, इनको सब मालूम सर्वज्ञ हैं कि नहीं, ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है, ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है, बोले ऐसी अगर शंका है तो ये मूर्खों की शंका, उनका डाउट है। अच्छा भगवान सोच रहे हैं कि अगर अर्जुन प्रश्न करे तो मैं अपने को रिवील करूं, तुम प्रश्न करो तब तो मैं बताऊं, एक बार पूछो तो सही, मैं आई एम गिविंग यू लीड, तुम प्रश्न करो मेरे को, फिर मैं अपने बारे में बताऊंगा कि अवतार क्या होता है, ईश्वर क्या है। क्वेश्चन तो एक निमित्त है, प्रश्न ना होता तो भगवान अपने बारे में बताते नहीं, भगवान अपने बारे में बताएंगे, इसलिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सूर्य को भगवान ने ज्ञान दिया, अब इसका उत्तर भगवान देते हैं।
श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि नवचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।
देखो यहां पर हमने पिछले श्लोक में देखा कि भक्त सखा और शिष्य अर्जुन है, इसलिए वो अधिकारी है। तीन क्वालिफिकेशन उसके पास में है। मगर 18वें अध्याय में भगवान जाके एक जगह बोलेंगे कि अभक्त को ये ज्ञान कभी मत देना। 18वें अध्याय में जाके भगवान बोलेंगे ये कि ये जो ज्ञान मैंने इस गीता में लिखा है, ये ज्ञान किसी अभक्त को, जो मेरा भक्त नहीं है, जो इसमें विश्वास नहीं करता है, उसको कभी मत देना। भगवान अब अपने बारे में बताएंगे कि वह अनीश्वर एवं अल्पज्ञ नहीं है। भगवान कहेंगे, सीधा सीधा कहेंगे कि मैं ईश्वर हूं, एकदम साफ साफ कह देंगे। लोग समझते हैं कि भगवान क्या है, इज ए गुड डांसर, इज ए गुड चैरिएटर, म्यूजिशियन, बांसुरी बजाते हैं, लोगों को नचाते हैं। बोला ऐसा नहीं है। भगवान को जानने का मौका अब जो है अर्जुन को मिला, और अब इसके अंदर अब अर्जुन अवतारवाद की चर्चा उठाएगा या भगवान खुद कहेंगे। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारी शंका दूर करता हूं, मेरे को अगर जीव मानोगे तब संशय होगा, डाउट होगा। मेरे को अगर तुम अपने जैसा मानोगे, 70 साल का हूं, यही मेरा पहला जन्म है, तब शंका होगी। मगर यह पहला जन्म मेरा नहीं है। क्या है भगवान आपका? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन, मेह मीन्स मेरे, बहुनी, बहुनी मतलब प्लूरल, बहु, अनेक 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 जन्म मेरे हुए हैं, एक दो नहीं, अनेक अनेक जन्म हुए हैं हमारे, अनगणित, व्यतीतानी जो हो चुके हैं पास्ट में, इसका मतलब अवतार असंख्य है, एक तो नहीं, कूर्म मत्स्य भरा है, बस ये 10 अवतार नहीं है, अनेक अवतार हो चुके हैं, अनेक अनेक अवतार। तब चार्जुन, अर्जुन तुम्हारा जन्म भी बहुत बार हुआ, हम दोनों कई बार जन्मे हैं, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं है। और नहीं, हम लोग का, अर्जुन की जगह हम लोग हैं सब, जीव जितने भी हैं वो कौन है? अर्जुन है। तो हर जीव का जन्म अनेक बार पीछे हो चुका है। अच्छा, अर्जुन सोच रहा, मुझे तो याद नहीं है भगवान, हमें तो ये याद नहीं रहता है कि पिछली क्लास में कौन सा श्लोक हुआ था। आप तो अब जन्म की बात कर रहे हो, हम 7 दिन आगे की बात करते हैं, कौन सा अध्याय चल रहा है ये याद नहीं रहता, कौन सा श्लोक हुआ है ये याद नहीं रहता। देखो अर्जुन, या लोग अपनी लॉजिक के हिसाब से सच्चाई खोजना चाहते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं है इसलिए आपको भी याद नहीं होगा। यही लॉजिक देता है ना, मेरे को याद नहीं है तो आपको कैसे याद होगा। तो हम भगवान को अपने स्तर पर अपने जैसा मानते हैं, तब ऐसा हम सोचते हैं। तानी अहम वेद सर्वानी नौतम वेद परंतप, तुम्हारे सारे जन्म मेरे को याद है, मेरे को अपने सारे जन्म याद है, मगर अर्जुन तुमको तुम्हारा जन्म भी याद नहीं है। देखो यहां पर भगवान की सर्वज्ञता आ गई। भगवान यहां कहते हैं, तानि अहम वेद सर्वानी, मैं सब जन्म जानता हूं। तानी मैंने किसके? अपने और तुम्हारे। अपने और तुम्हारे का मतलब क्या? सारे जीवों के जन्म को मैं जानता हूं, सारे जीवों के जन्म को मैं जानता हूं। अच्छा, तो जन्म दोनों के ही अनेक हुए हैं, फर्क इतना ही है कि भगवान सारे जन्म जानते हैं, अर्जुन के भी जानते हैं, हर जीव के भी जानते हैं, अपने भी जानते हैं, और अर्जुन अपना पुराना जन्म नहीं जानता, इतना ही फर्क है। मगर जन्म दोनों के अनेक हुए। तो एक जगह संस्कृत कक्षा चल रही थी, तो ऐसे ही एक शिक्षक पढ़ा रहे थे, ये श्लोक आ गया वहां पर, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुना तान्यम वेदम सर्वानी तब एत परंतप। तो पिछली बेंच पर बच्चे बैठे हुए तो हंस रहे थे, तो शिक्षक सोच रहा था कि ये कहीं मेरी हंसी तो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है? तो बोला, हमको मालूम है। क्या मालूम भाई? भगवान का जन्म मई महीने में हुआ, मई जन्मानी। और अर्जुन का कब हुआ? 4 जून को, 4 जुना है ना, 4 जून को उनका हुआ और मई में कृष्ण का हुआ, ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, तो हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हुए, मुझे सारे जन्म याद है मगर तुम्हें नहीं, क्यों? शंकराचार्य जी उसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि धर्म अधर्म आदि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात् जीव का जो है उसकी जो याददाश्त है वो ढकी हुई है। क्यों ढकी हुई है? धर्म अधर्म। धर्म अधर्म का मतलब पाप पुण्य। पाप पुण्य का मतलब वो कर्म करता है। कर्म कैसे हो सकते हैं? पाप पुण्य रूप हो सकते हैं ना। आप जब कर्म करते हो, या तो वो अच्छा कर्म होता है, नहीं तो खराब कर्म होता है, या मिश्रित कर्म होगा, तो फल क्या होगा? पाप पुण्य होगा। कब आएगा? बाद में आएगा, कर्म करने के बाद आएगा। तो बोलते हैं जीव की जो है वो उसकी बुद्धि जो है ढकी हुई है, किससे? बोले धर्म और धर्म प्रतिबिद्ध है। धर्म, आप हमारे BMI चार्ट को उसके अंदर वासना को पकड़ लो, अज्ञान के कारण ढकी हुई है। कर्म क्यों होता है? आप क्यों कर्म करते हो? अज्ञान से। किस चीज का अज्ञान है? अपना ना। आपका स्वरूप क्या है? हम सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, मगर हम तो दुखी हैं, हमको नहीं मालूम हम सच्चिदानंद हैं, हम अज्ञानी हैं। अच्छा, अज्ञानी है तो फिर क्या चाहते हो? सुख चाहते हैं। सुख कैसे मिलेगा? कामना आई, मेरे को सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। ये करने से सुख मिलेगा, ये काम करने से सुख मिलेगा, ये संपत्ति मिलने से सुख मिलेगा, ये व्यक्ति मिलने से सुख मिलेगा, वहां जाने से सुख मिलेगा, वहां से भाग जाने से सुख मिलेगा। हर जगह हम सुख खोज रहे हैं। क्यों सुख खोज रहे हैं? अरे तुम तो आनंद स्वरूप हो, क्यों खोज रहे हो? अज्ञान, इग्नोरेंस के कारण हम जो है बाहर कामना कर रहे हैं। इसलिए धर्म और धर्म प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वात्, आपकी ज्ञान शक्ति जो है वो उससे ढकी हुई है, धर्म अधर्म के कारण से, अज्ञान के कारण से ढकी हुई है। तो ये जीव की कहानी। जीव क्या है? अर्जुन। अर्जुन के क्यों उसकी बुद्धि ज्ञान शक्ति ढकी, उसको क्यों नहीं ज्ञान है? पूछ ले जन्म का। धर्म अधर्म प्रतिबद्ध, धर्म अधर्म उसको बांध के रखा हुआ है। तो भगवान आप कौन है? अहम पुनः नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभावात अनावरण ज्ञान शक्ति। मैं कौन हूं? भगवान खुद कह रहे हैं, अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपात। हमारी ज्ञान शक्ति अनावरण नहीं है, उसके ऊपर एकदम क्लीन है, कोई प्रतिबंध नहीं है। इससे यह चीज साबित होती है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, नंबर वन। ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जन्म लेता है। जीव जो है वो अल्पज्ञ है। क्यों अल्पज्ञ है? धर्म अधर्म के कारण उसकी ज्ञान शक्ति ढकी हुई है, इसलिए अल्पज्ञ है। उसको पिछले जन्म का याद नहीं है। और उसका जन्म कैसे होता है? भगवान का जन्म तो लीला है, उसकी इच्छा के अनुसार होता है। जीव का जन्म प्रारब्ध के कारण होता है, उसके कर्म के कारण होता है, उसकी वासना के कारण उसका जन्म होता है। दोनों में फर्क है। साकाम अभिजायते तत्र तत्र कामान कामयते मन्यमाना। काम के कारण उनका जन्म होता है। सुभी जी बोलेंगे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। क्यों हो रहा है पुनरपि पुनरपि? क्यों हो रहा है पुनरपि? कर्म के कारण हमारा जन्म बार बार होता है। तो जीव जीव के लिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना बहुत कठिन है। जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो इस चक्र से कभी नहीं निकल पाएगा। और भगवान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उनका जन्म उनकी इच्छा के अनुसार है। अच्छा, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु गारंटेड है। हमने आगे पढ़ा है, कहां पढ़ा है? गीता में ही पढ़ा है, दूसरे अध्याय में। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जातस्य जिसका जन्म हुआ उसकी तो जरूर होगा। ये तो हम लोग को मालूम है। लोग को जन्मते हुए देखते हैं, मरते हुए भी देखते हैं, मगर फिर भी हम कभी नहीं सोचते हमारी मृत्यु होगी। दूसरे की होती है, हमारा भी बहुत देर है, ऐसा सोचते हैं हम। भगवान ने एक और बात कह दी कि मृत का फिर से जन्म होता है। ये चीज हमको नहीं पता है। हम मरने के बाद में फिर जन्म होगा, ये पाठ हमको दिखाई नहीं पड़ता है। मगर जन्म होगा मृत्यु होगी ये तो हमको दिखाई पड़ता है, मगर जो मर गया उसका फिर से जन्म होगा ये पोर्शन हमको दिखाई नहीं पड़ता। पता भी नहीं लगता है कि जो मर गया वो कहां जन्मा, हम जाके उसे मिल नहीं सकते। अच्छा, गीता की व्याख्या अनेक लोगों ने की है, हजारों टीकाएं हैं। शांकर भाष्य है, नीलकंठ है, आनंदगिरी है, श्री मधुसूदन सरस्वती हैं, श्रीधर स्वामी हैं, बहुत लोगों ने व्याख्या लिखी है। तो मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं श्री भगवान का जन्म क्या है? बोला लीला देह है। वो तो अपना स्पोर्ट के लिए अपना देह ले लेते हैं, जब जो करना होता है उसके हिसाब से, कभी बरा ले लिया, कभी मत्स्य अवतार हो गया, कभी कूर्मा अवतार हो गया, जब जब मर्जी होता है जैसे हो जाए ले लेते हैं अपना, उनका लीला देह है। मगर उनकी दृष्टि के अंदर जन्म नहीं है। हमारी दृष्टि में कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण की दृष्टि से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। तो मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं लोक दृष्ट्या अभिप्रायेण आदित्यस्य उदयवंत। जैसे लोक दृष्टि के अंदर हमको लगता है कि सूर्योदय हुआ, रोज सवेरे हम देखते हैं 6:45 सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त पता लगता है, ये सूर्योदय हुआ ये सूर्यास्त हुआ पता लगता है ना। सूर्य से पूछो उदयास्त होता है? नहीं होता है। लोक दृष्टि में होता है, उसकी दृष्टि से नहीं होता है। कृष्ण का जन्म लोक दृष्टि से जन्माष्टमी को हुआ, कृष्ण की दृष्टि से नहीं हुआ। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया, नहीं तो समझ में आता अगर हम बोलते कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, आप समझ पाते? मधुसूदन सरस्वती कहते हैं देखो ऐसे समझो इसको, सूर्योदय देखने के लोग कन्याकुमारी जाते हैं, कंचनजंगा जाते हैं, वहां से सूर्योदय देखेंगे, मगर सूर्योदय तो होता ही नहीं है, सूर्य की दृष्टि में उदय अस्त नहीं है। भागवत में आता है नंद बाबा ने नाम संस्कार किए, गर्ग ऋषि को बुलाया और उनसे पूछा भाई इनका नाम संस्कार करो कृष्ण का। नंद बाबा ने बुलाया, तो गर कहते हैं बहुनी संति नामानी रूपानी च संतुष्यते, आपके लड़के का तो कई रूप है, कई जन्म है, क्या नाम बताएं। वहां भी बहुनी बहुत से जन्म उनके हुए आगे। अच्छा तब च मधुसून कहते हैं तब च मतलब अज्ञानी, तब च का मतलब अज्ञानी। देखो महात्मा की खोज, देखो कैसे उसको कहते हैं अज्ञानी। तो अर्जुन तुम अज्ञानी हो, क्यों अज्ञानी हो, कि कर्म जीतानी देह गृणानी, कि तुम्हारा जन्म जो है कर्म के कारण हुआ। कर्म कैसे होता है, अज्ञान के कारण होता है, इसलिए तुम कौन हो, अज्ञानी। केवल इतना ही नहीं, वो और भी कहेंगे। भगवान ने इस श्लोक के अंदर दो वर्ड यूज किए हैं, अर्जुन और परंतप। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि दोनों ही वर्ड इंडिकेट करते हैं कि ये अज्ञानी है। अर्जुन वर्ड आल्सो मींस अज्ञानी, परंतप आल्सो मींस अज्ञानी। कैसे भाई, बोलते हैं अर्जुन क्या है, एक वृक्ष का नाम है, है ना। अर्जुन वृक्ष होता है तो
होता है।
एक होता है
अर्जुन की छाल होती
है। हाँ अर्जुन वृक्ष होता है, बहुत सीधा होता है एकदम। यमलार्जुन एक लीला भगवान की आती है, दो वृक्ष हैं यमलार्जुन, उखल से टांगते हैं दोनों वृक्ष गिर जाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष में बुद्धि कितनी होती है, इसलिए अज्ञानी। वृक्ष में बुद्धि कम है इसलिए अर्जुन तुम अज्ञानी हो। एक दूसरी उसकी परिभाषा है अर्जनात अर्जुन, जो ज्यादा से ज्यादा अर्जन करे वो अर्जुन है। ऋजुत्वात अर्जुन, जो सीधा हो, बहुत सरल था अर्जुन। अर्जुन वृक्ष भी सीधा होता एकदम, और ऋजुत्वात सीधा है। क्योंकि अर्जुन वृक्ष के अंदर बुद्धि कम है इसलिए अर्जुन तुम परंतप। परंतप मतलब जो शत्रुओं को तपाए उसको क्या कहते हैं, परंतप। ये कैसे अज्ञान को सूचित करता है, ये इस तरह सूचित करता है कि आप अपने को शत्रु से अलग मानते हो, द्वैत है, भिन्न है। वेदांत क्या कहता है कि मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं यहां पर, ना अन्यत किंचित अस्ति, ब्रह्मन को छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं। अगर आप दूसरा कुछ देखते हो तो आप अज्ञानी। भगवान कहते हैं मेरे को छोड़कर दूसरा कोई है नहीं, अगर आप तुम दूसरा कुछ देख रहे हो तो वो अज्ञान है। इसलिए अर्जुन शब्द परंतप शब्द दोनों शब्दों से ये लक्षित होता है कि अर्जुन
अज्ञानी।
देखो कितनी अच्छी परिभाषा दिखाई है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।